आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत विश्व के सामने एआई का एक अनूठा मॉडल प्रस्तुत करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज उत्कृष्ट कार्यों के लिए रेल पुरस्कार प्रदान करेंगे। मध्य प्रदेश और असम वन्य जीवों का आदान प्रदान करेगा। और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी, कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के नीचे पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को मेड इन इंडिया और मेड फॉर द वर्ल्ड की भावना को दर्शाते हुए विश्व के सामने एक अनूठा एआई मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने नैतिक, निष्पक्ष, पारदर्शी और डेटा गोपनीयता सिद्धांतों पर आधारित भारतीय एआई मॉडल विकसित करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय एआई स्टार्टअप्स के साथ एक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भारत अगले महीने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा, जिसके माध्यम से देश प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि स्टार्टअप और एआई उद्यमी भारत के भविष्य के सहनिर्माता हैं और देश में नवाचार और बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन की अपार क्षमता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि देश वैश्विक स्तर पर किफायती एआई, समावेशी एआई और मितव्ययी नवाचार को बढ़ावा दे सकता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि भारतीय एआई मॉडल विशिष्ट होना चाहिए और स्थानीय और स्वदेशी सामग्री तथा क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज नई दिल्ली में रेलवे के 100 अधिकारियों को 70वां अति विशिष्ट रेल पुरस्कार 2025 प्रदान करेंगे। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले रेलवे जोन को पुरस्कार के रूप में 26 शील्ड दी जाएंगी। ये पुरस्कार भारतीय रेलवे में अनुकरणीय सेवा और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जा रहे हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों के दौरान सुरक्षित और सुचारू रेल परिचालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मियों को 26 शील्ड दी जाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कई अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में निर्बाध रेल सेवाएं सुनिश्चित की और राहत कार्यों में सहयोग दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर में चल रहे सोमनाथ उत्सव में लोगों के शामिल होने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भविष्य की पीढ़ियों को सनातन संस्कृति के लचीलेपन और निरंतरता का संदेश प्रसारित करने के लिए मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में प्रथम हमले के 1000 वर्षों के पूर्ण होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाने का निर्णय लिया है। श्री शाह ने कहा कि एक ज्योतिर्लिंग धाम होने के साथ सोमनाथ महादेव मंदिर सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक गौरव की एक चिरस्थायी विरासत है। सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख मंच प्रगति ने 85वीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने 2015 में प्रगति का शुभारंभ किया था। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा के कारण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी और मुद्दों का समाधान संभव हुआ है। प्रगति ने केंद्र, राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों को एकल डिजिटल मंच पर लाकर सहकारी संघवाद का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रगति से निर्णय लेने की प्रक्रिया, परियोजनाओं में देरी के कारणों का समाधान और जवाबदेही तय होने में मदद मिलती है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम महाराष्ट्र में सोलापुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन पर एक नजर डालते हैं।
महाराष्ट्र में सोलापुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और राज्य की बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने में एक अहम परियोजना के तौर पर उभरा है। इस परियोजना को लगभग 11,406 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है, जिसकी कुल स्थापित क्षमता 1,320 मेगावाट है। यह प्रोजेक्ट मार्च 2012 में शुरू की गई थी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को फरवरी 2016 तक पुनर्वास का मुद्दा हल करने और विद्युत मंत्रालय के सचिव को जनवरी 2017 तक परियोजना की दोनों इकाइयों को पूरा करने का निर्देश दिया। प्रगति के माध्यम से जिन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया गया, उनमें से एक उजनी बांध से 115 किलोमीटर लंबी मेकअप वाटर पाइपलाइन थी, जो समयबद्ध विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। सोलापुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रगति तंत्र का एक मजबूत उदाहरण बनकर उभरा है, जिसने भूमि, जल, पुनर्वास और संचरण जैसे मुद्दों को शुरुआती चरण में ही हल करके जटिल अवसंरचना से जुड़ी परियोजनाओं को शीघ्रता से आगे बढ़ाया है। दीपेंद्र कुमार के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देश और प्रदेश दोनों उन्नति के प्रति अग्रसर हैं। उन्होंने ग्वालियर में कल मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अंचल के लिए हम कई सौगातें लेकर आ रहे हैं। अटल एक्सप्रेस वे की जो बाधाएं थी, हमने उनको दूर किया है। उन्होंने कहा कि चंबल एक्सप्रेस वे बन जाने से इस अंचल में एक औद्योगिक क्रांति भी आएगी।
कई सौगातों को भी हम लेकर आ रहे हैं, ट्रेनों की श्रृंखला है।
अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल गुवाहाटी प्रवास के दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के साथ वन्य जीवों के आदान प्रदान को लेकर चर्चा की। दोनों राज्यों के बीच में सहमति बनी कि असम में 50 जंगली भैंसे तीन समूह में 3 साल में, गेंडे का एक जोड़ा और 3 कोबरा मध्य प्रदेश में लाए जाएंगे। इन्हें भोपाल के वन विहार में रखा जाएगा। मध्य प्रदेश असम की मांग के अनुसार 1 जोड़ा टाइगर और 6 मगरमच्छ देगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में चीते के बाद एक अब भैंसा पुनर्स्थापन से प्रदेश की जैव विविधता में एक नया आयाम जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पहले ही टाइगर रिजर्व, टाइगर स्टेट और लेपर्ड स्टेट के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सीधी जिले के बहरी में आयोजित विभिन्न विभागों के हितग्राहियों के प्रशिक्षण सह उन्मुखी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कार्यक्रम में 201.64 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव एक बगिया माँ के नाम योजना में 505 हितग्राहियों को 11.58 करोड़ रुपए की राशि से लाभान्वित करेंगे। अब बात मौसम की। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। कल शहडोल जिले के कल्याणपुर में न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। कई जिलों में रात का पारा 3 डिग्री से नीचे चला गया। प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले 2 से 3 दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में आगामी 15 जनवरी को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस सुबह 11 बजे से मंत्रालय में होगी। गुना में बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम अभियान चलाया जा रहा है। बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम के लिए गठित संयुक्त टीम द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर निरीक्षण किया गया। शाजापुर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर रिजू बाफना द्वारा जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आपत्तिजनक संदेशों, चित्रों, वीडियो और ऑडियो संदेश के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया गया है। खंडवा में दिशा बैठक में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने किसानों को नरवाई जलाने से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। और आगरमालवा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत युवाओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करने हायर सेकेंडरी विद्यालयों में और महाविद्यालयों में आज से 2 दिवसीय विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर होगा। नमस्कार।